लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर, हम आपसे समुद्री तटों पर कठिन परिश्रम करने वाले तथा वहीं पर जीवन यापन करने वाले समस्त नाविकों, मछुआरों और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना से उन्हें समर्थन मिले। आमीन।
नमस्कार श्रोताओ, आज के प्रसारण विषय हैं कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, हम अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत युवाओं पर संपन्न हुई धर्मसभा 2018 के अतीत युवाओं और विश्व की सारी कलिसिया के नाम संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र क्रिस्तुस विवित अर्थात यीशु ख्रिस्त जीवित हैं पर एक चर्चा कर रहे हैं। क्रिस्तुस विवित का सातवां अध्याय युवाओं की प्रेरिताई के बारे में जिक्र करता है। युवाओं की प्रेरिताई के संबंध में हमने अपने पिछले प्रसारण के अंत में विशिष्ट प्रेरिताई की चर्चा करते हुए कहा कि युवाओं को नियम से बोझिल करने के बदले जो ख्रिस्तीयता को संकुचित और नैतिकतावादी धर्म निरूपित करता है, हम इसके लिए बुलाए जाते हैं कि हम निर्भीकता में उन्हें उत्तरदायित्वों को कंधे में लेने हेतु तैयार करें। हम उन्हें इस बात के ज्ञान से वाकिफ करें कि जीवन में गलतियाँ, असफलताएं और कठिनाइयाँ जीवन के वे अनुभव होते हैं जो हमारी मानवता को और भी मजबूत बनाती हैं। युवाओं की धर्म सभा हमें इस बात की याद दिलाती है कि युवा प्रेरिताई सभों को अपने में समाहित करें जहाँ सभी समुदायों के युवा जन सम्मिलित हों, जो इस बात की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट कराता है कि कलिसिया के खुले दरवाजे सभों के लिए खुले हैं। युवाओं के कार्यक्रम में सहभागी होने हेतु किसी व्यक्ति को कलिसिया के सभी बातों से सहमत होने की आवश्यकता नहीं है। यह अपने में काफी है कि वे अपने को उनके प्रति खुला रखें जो ईश्वर से मिलन हेतु एक तरह से विशेष चाह रखते हैं। युवाओं के संबंध में कुछ प्रेरितिक कार्यों की शुरुआत विश्वास की यात्रा में शुरू हुई है, लेकिन हमें विशिष्ट युवा प्रेरिताई की जरूरत है जिसके द्वारा सभों को एक स्थान मिल सके जहां वे अपने को जीवन की तकलीफों, हताशी और निराशा अपनी मुसीबतों में पाते हैं, जहां वे स्वयं को अपनी कठिनाइयों, अतीत की गलतियों और अपने पापों और जीवन की मुसीबतों में जीवन को खोजने की कोशिश करते हैं। श्रोताओं, हमें उन्हें भी स्थान देने की जरूरत है जो जीवन को दूसरी नजरों से देखते हैं, जो दूसरे धर्मावलंबी हैं या अपने को किसी भी रूप में धर्म से अलग रखते हैं। सभी युवा बिना किसी भेदभाव के ईश्वर के हृदय के निकट रहते हैं और इस भांति कलिसिया के हृदय के निकट रहते हैं। हम खुले रूप में इस बात को स्वीकारते हैं कि उक्त कथन जिसे हम घोषित करते सही अर्थ में हमारे प्रेरितिक कार्यों में परिलक्षित नहीं होते हैं। हम बहुधा अपने ही वातावरण में अपने को कैद किए रहते हैं जहां अपने मुख से घोषित करने वाली बातों को हम स्वयं ही अनुपालन नहीं करते हैं। हम उन कार्यों हेतु अपने को संलग्न नहीं करते जो हमसे अधिक समर्पण की मांग करती है, जो हमें अपने सुरक्षित स्थल से बाहर निकलने की मांग करती है। वहीं हम उन कार्यों में अधिक समय व्यतीत करते हैं जिनमें हमें अधिक आनंद का अनुभव होता है, जबकि वे छिछले होते हैं। सुसमाचार हमें साहसिक बनने हेतु कहता है और बिना किसी सोच विचार के और बिना बहकावे के हम विश्व के सभी युवाओं हेतु ईश्वरीय प्रेम का साक्ष्य देने और उनकी ओर सेवा का हाथ बढ़ाने हेतु बुलाए जाते हैं।
मेरे संग चल।
मेरे संग चल।
युवा प्रेरिताई जब अपनी सेवा में केवल उच्च लोगों से अपने को तटस्थ रखती और जमीनी स्तर पर अपने कार्यों को करती है, तो यह उस प्रक्रिया से होकर गुजरती है जो अपने में निरंतर सम्मानजनक, धैर्य, आशावादी, थकानहीन और करुणामय होती है। धर्म सभा इस संबंध में एमॉस की राह में शिष्यों के उदाहरण को एक आदर्श स्वरूप प्रस्तुत करती है। यीशु उन दो शिष्यों के साथ चलते हैं जो अपने जीवन में घटी घटनाओं का अर्थ समझने में अपने को असक्षम पाते हैं और निराश यरूशलेम और समुदाय से अपने को दूर करते हैं। उनके साथ चलने की चाह रखते हुए यीशु उनके साथ राह चलने लगते हैं। वे उनसे सवाल करती और धैर्य से उनकी बातों को सुनते हैं और इस भांति वे उन्हें उन बातों को समझने में मदद करते हैं जिन्हें वे अपने जीवन में अनुभव कर रहे होते हैं। तब अपने प्रेम और शक्ति में वे उन्हें अपने वचनों को सुनने और धर्म ग्रंथ के प्रकाश में घटित हुई घटनाओं को देखने हेतु प्रेरित करते जिन्हें उन्होंने अनुभव किया। यीशु उनका निमंत्रण स्वीकारते और शाम होने पर उनके साथ रहते हैं। वे उनके अंधेरे जीवन में प्रवेश करते हैं। उनकी बातों को सुनने के दौरान उनका हृदय किस तरह उद्दीप्त हो रहा होता और उनकी आंखें किस तरह खुल गईं। वे उन्हें रोटी तोड़ने के क्रम में पहचान लेते हैं। वे उसी क्षण अपने समुदाय को लौटने की सोचते जिससे वे पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त से अपने मिलन की बातों को दूसरों के संग साझा कर सकें। श्रोताओं, बहुत सारी बहुचर्चित लोक धार्मिकता जिनमें खास रूप से हम तीर्थ यात्राओं को पाते हैं जो युवाओं को आकर्षित करती हैं, जिनमें सहभागी होते हुए वे ईश्वर में अपने ठोस विश्वास को व्यक्त करते जबकि कलीसियाई विधि विधानों को सहज में स्वीकार करने हेतु वे अपने में असहज महसूस करते हैं। ईश्वर को इस रूप में खोजना खासकर उन युवाओं में होता है जो अपने में गरीब हैं और समाज के विभिन्न स्तरों में जीवन यापन करते हैं। हम उन्हें हे की नजरों से ना देखें वरन उन्हें प्रोत्साहित करें और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करें। बहुचर्चित लोक धार्मिकता अपने में एक वैध विश्वासमय जीवन की अभिव्यक्ति है जो युवाओं के संबंध में एक स्वाभाविक प्रेरिताई कार्य को व्यक्त करती है जहां हम अपने को ईश प्रजा हेतु समर्पित करते हैं। संत पापा फ्रांसिस युवाओं के संबंध में इस बात को कहते हैं, युवाओं को प्रेरितों के रूप में तैयार करने हेतु अधिक समय नहीं लगता है, यहाँ तक कि वे जो अपने में अति कमजोर, सीमित और संकट की स्थिति में होते अपनी वर्तमान परिस्थिति में ही प्रेरित बन सकते हैं, क्योंकि अच्छाई हमेशा अपने में बांटी जा सकती है। यद्यपि हम जीवन की बहुत सारी परिस्थितियों में अपनी कमजोरियों में जीवन यापन करते हैं, एक युवा जो माता मरियम हमारी सहायता की तीर्थकर्ता और अपने एक मित्र को अपने साथ आने हेतु निमंत्रण देता है, अपने इस कार्य के द्वारा ही वह अपने में एक अच्छा प्रेरित बनता है। एक लोकप्रिय युवा प्रेरिताई के द्वारा हम एक अविभाज्य, अपरिवर्तनशील लोकप्रिय प्रेरित कार्य में प्रवेश करते हैं जो हमारी प्रथागत मॉडल कार्य करने के रूप और हमारे सोचने के तरीके को तोड़ती है। हम युवाओं के साथ चलें और उन्हें प्रोत्साहित करें, लेकिन हम उन्हें बहुत अधिक नियमों के द्वारा नियंत्रण में रखने का प्रयास ना करें। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत युवाओं पर संपन्न हुई धर्म सभा 2018 के अतीत संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र क्रिस्तुस विवित अर्थात यीशु ख्रिस्त जीवित हैं पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इसके बारे में अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
चला था तूने संग चल मसीहा मेरे संग।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने मंगलवार को ट्वीट प्रेषित कर ईश्वर के चुनाव पर प्रकाश डाला। संदेश में उन्होंने लिखा, ईश्वर हमारी अच्छाई के कारण हमें नहीं चुनते हैं, यकीनन हम जो भी हैं और हम छोटा महसूस करते हैं। और जून की शुरुआत में रोम के बम्बिनो येसु अस्पताल में एक साथ जुड़ी बच्चियों को एक असाधारण सर्जरी कर अलग कर दिया गया। हर्मिना नियोतो एक साथ जुड़ी बच्चियों की माँ है। वे बांगुई से 100 किलोमीटर दूर एक गांव की रहने वाली हैं। बम्बिनो येसु अस्पताल में लगभग एक महीने पहले एक साथ जुड़ी बच्चियों के कपाल और मस्तिष्क को असाधारण ऑपरेशन द्वारा अलग कर दिया गया। संत पापा फ्रांसिस ने हाल ही में संत मार्था प्रार्थनालय में इन छोटी बच्चियों एरविना और प्रीफिना का एक निजी समारोह के दौरान बपतिस्मा दिया। संत पापा फ्रांसिस के प्रति आभार प्रकट करते हुए इन बच्चियों की माँ हर्मिना लिखती हैं कि संत पेत्रुस महागिरजा घर में प्रवेश करते ही उसकी विशालता आँखों को चकाचौंध करने वाली थी, परंतु उनकी नज़र उस आकृति पर आकर रुक गई जहाँ माता मरियम ने अपने निर्दोष बेटे के मृत शरीर को अपनी बाहों में लिए हुए थी। उसके मन में भी एक प्रश्न उठा, वह भी अपनी निर्दोष बच्चियों को अपनी बाहों में लिए हुए है। वे बच्चियाँ सामान्यता से वंचित हैं। आगे वे लिखती हैं, अगर कल ये बच्चियाँ पृथ्वी पर सबसे भाग्यशाली बच्चों का हिस्सा बन पाएंगे, दूसरे बच्चों के समान स्कूल जा पाएंगे और सामान्य जीवन जी पाएंगे, तो यह 2015 में बांगुई में खोले गए पवित्र दरवाजे की वजह से है। एक मार्ग जिस पर जरूरतमंद चल सकते हैं, जैसा कि मैं हूँ। भली इच्छा रखने वाले डॉक्टरों की टीम जिन्होंने मेरी जुड़ी हुई बच्चियों को अलग करके उन्हें सामान्य बना दिया। हर्मिना ने पत्र में येसु बम्बिनो अस्पताल की अध्यक्ष मरियेला एनोक, न्यूरो सर्जरी विभाग के प्रमुख प्रोफेसर कार्लो और सभी डॉक्टरों को धन्यवाद दिया। उनकी टीम ने उनकी लड़कियों को चमत्कारिक रूप से अलग और पुनर्जीवित किया है। अंत में उन्होंने लिखा, प्रार्थना पृथ्वी के लोगों को एकजुट करती है। मैं एकजुटता के लिए माता मरियम से प्रार्थना करूंगी, लेकिन मुझे उनसे उतना पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे जानती हैं कि दुनिया को क्या चाहिए। उधर नाइजीरियाई कैथोलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन CBCN ने हाल के हिंसक हमलों के मद्देनजर देश में बढ़ती असुरक्षा और विशेष रूप से उत्तरी नाइजीरिया में आतंकवाद के कृत्यों की निंदा की है। 8 अगस्त को जारी एक बयान में धर्माध्यक्षों ने कहा, हम उत्तरी नाइजीरिया में बढ़ती असुरक्षा और आतंकवाद के कृत्यों के बारे में सुनते रहते हैं। हम सभी इस स्थिति से थक चुके हैं। हमारा दिल पीड़ा से भर जाता है जब हम दक्षिणी कंडूना में चल रहे नरसंहार के बारे में सुनते हैं। हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। हर किसी से एक प्रतिक्रिया होनी चाहिए और वह यह है कि हत्याएं बंद होनी चाहिए। देश के सभी धर्माध्यक्षों की ओर से CBCN के अध्यक्ष बेनिन सिटी के महाधर्माध्यक्ष अगस्टीन अकुबे ने बयान पढ़ा। संदिग्ध फुलानी मिलिशिया द्वारा हमले हाल ही में उत्तर नाइजीरिया विशेष रूप से कंडूना राज्य में बढ़ी है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों में जुलाई में फुलानी समूहों द्वारा कम से कम 3 हमले दर्ज किए गए। बुधवार को कंडूना राज्य के जंगोन कटफ स्थानीय सरकारी क्षेत्र में अज्ञात बंदूकधारियों ने कम से कम 33 व्यक्तियों को मार दिया, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। राज्य सरकार ने हाल ही में बढ़ते तनाव को देखते हुए क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया है। धर्माध्यक्षों ने संघीय सरकार साथ ही कंडूना राज्य सरकार को निर्दोष लोगों की हत्या पर रोक लगाने का आह्वान किया। उन्होंने यह भी जोर देकर कहा कि हत्या के अपराधियों को न्याय के लिए लाया जाना चाहिए। बयान में कहा गया कि किसी भी नाइजीरियाई के जीवन का नुकसान किसी भी धार्मिक विचारधारा या किसी राजनेता की महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने में मदद नहीं करता। पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए धार्मिक कट्टरपंथियों द्वारा बेरहमी से हत्या किए गए निर्दोष लोगों के खून से निर्मित विकास कभी भी धार्मिक कट्टरपंथियों द्वारा नहीं किए जाएंगे। जब कोई न्याय नहीं होता है या न्याय नहीं किया जाता है तो शांति नहीं हो सकती। जब शांति नहीं होती है तो विकास नहीं हो सकता, धर्माध्यक्ष ने जोर देकर कहा। इन समस्याओं के मद्देनजर धर्माध्यक्षों ने सभी कैथलिकों को 40 दिनों तक देवदूत प्रार्थना का पाठ करने के बाद एक हे पिता हमारे, तीन प्रणाम मरिया और पौत्र त्रित्व की महिमा प्रार्थना को प्रतिदिन करने हेतु आमंत्रित किया। उधर भारत के ख्रिस्तियों ने सोमवार 10 अगस्त को काला दिवस मनाया और लोगों को याद दिलाया कि ईसाई धर्म अपनाने वाले दलितों को संविधान आधारित भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय संविधान हिंदू, सिख और बौद्ध दलितों के उत्थान के लिए सामाजिक लाभ और विशेषाधिकार प्रदान करता है, लेकिन मुस्लिम और ईसाई दलितों के सामाजिक लाभ और विशेषाधिकार को इनकार करता है। भारतीय ईसाइयों द्वारा 10 अगस्त का काला दिवस का विरोध इस भेदभाव के खिलाफ है। इस वर्ष काला दिवस के अवसर पर वसई महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स मचाडो ने वाटिकन न्यूज से बातें करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के सभी प्रभावों का पहला शिकार दलित जैसे गरीब लोग हैं। वे न केवल आर्थिक रूप से वंचित हैं और उनके पास आजीविका का कोई आवश्यक साधन नहीं है, बल्कि उन्हें समाज में बेकार समझा जाता है। उनके प्रति घृणा, उपेक्षा और भेदभाव किया जाता है। दलित ईसाइयों की सहायता भारतीय कैथलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के लिए बने विभाग के कार्यालय द्वारा लोबिंग, वकालत, ज्ञापन, अदालती याचिकाओं, आंदोलनों और विरोध प्रदर्शन जैसे कार्यों के माध्यम से की जाती है। 2009 में पहली बार काला दिवस मनाया गया था। प्रतिवर्ष CBCI, भारत की कलीसियाओं की राष्ट्रीय परिषद और दलित ईसाइयों की राष्ट्रीय परिषद द्वारा काला दिवस का आयोजन किया जाता है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।